ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। भारत और मध्य एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक हुई। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधिमंडलों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कैनानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन कर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 सम्मेलन में उभरते और विकासशील देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत होगी।
India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continue to law enforcement dialogue. So there's been some progress on that, recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted.
G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा में अल्बर्टा प्रांत के कैनसस में होगा। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के एरोस्पेस बुनियादी ढांचे में ये महत्वपूर्ण निवेश है। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक निर्माण केंद्र की स्थापना करेगा। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी के हालात से बाहर निकाला गया है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की यह दर जहां 2011-12 में 27.1% थी, वहीं 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई है। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में जी रहे थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेजी से घटकर 7.52 करोड़ के करीब रह गई है। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। 2011-12 में बेहद गरीबी की हालत में रहने वाले कुल लोगों में से 65% इन राज्यों में से थे। 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 कट्टर नक्सलियों ने कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 18 महीनों में राज्य में 28 माओवादी मारे गए, 31 गिरफ्तार हुए और 44 ने आत्मसमर्पण किया, जो एक रिकॉर्ड है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री भी है। कल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सुदूर कवंडे गांव के दौरे पर थे। करीब 12 नक्सली, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, उन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस ने संविधान की एक प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पण करने पर सरकारी नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
देश में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के फाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सवालंका का सामना विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कोको गॉफ से होगा। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल जैनिक सिनर का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।